आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। तृतीय पुस्तक जो तृतीय अर्थाधिकार स्थिति विभक्ति नामक, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 56 पर आ गए, 56। स्थिति विभक्ति की बात अपनी चल रही है और उसमें नाना जीवों की अपेक्षा बात चलेगी। जब स्थिति विभक्ति कहते हैं तो यहाँ मूल प्रकृति की बात चल रही है, मूल प्रकृतियों के स्थिति की बात है और उसमें उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति की बात। कल हमने उत्कृष्ट स्थिति का भंग देखा था, अब जघन्य स्थिति का भंग देखेंगे। 56 पृष्ठ पर यहाँ हम शुरू करते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य भंग विचय के कथन में जो अर्थपद है, अर्थपद का अर्थ कल देखा था हमने, क्या था, जिसको हमने फैक्ट कहा था, तथ्य कहा था, उसकी डेफिनेशन यहाँ दी है 55 पृष्ठ पर विशेषार्थ के पहले वाक्य में। कहते निश्चित सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था के द्योतक वाक्य को अर्थपद कहते हैं, यानी जो फैक्ट है उसको बताने वाला जो वाक्य है उसको अर्थपद कहते हैं। तो पहले अर्थपद बताएंगे और फिर उसके पश्चात यहाँ क्या क्या बातें बनती है उसकी बात। तो यहाँ अर्थपद क्या है, तो जो जघन्य स्थिति विभक्ति वाले हैं वे अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है। या तो जीव जघन्य स्थिति विभक्ति वाला होगा या अजघन्य वाला होगा, विभक्ति वालों में बात चल रही है। आप कहेंगे कोई ऐसे भी जीव है जो बिना विभक्ति है, उनकी यहाँ चर्चा नहीं चल रही, क्योंकि अपना विषय ही मूल स्थिति विभक्ति वालों का चल रहा है। तो अर्थपद क्या है कि जो जघन्य स्थिति विभक्ति वाले हैं वे अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है। ओघ की अपेक्षा जघन्य स्थिति विभक्ति वाले कौन जीव है ओघ की अपेक्षा? हाँ, क्षपक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में एक समय वाला एक निषेक बाकी रहता है, उसको जघन्य स्थिति वाला कहेंगे जीव। इनके अलावा जितने भी है वो सारे ही अजघन्य कहलाएंगे, अनादि से वो अजघन्य ही है और दसवें के अंत समय में जघन्य हो जाएगा। दो समय वाला हो तो भी अजघन्य होगा, चार समय होगा तो भी होगा, और 70 कोड़ा कोड़ी वाला भी अजघन्य कहलाएगा। जब उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट की बात थी तब उत्कृष्ट यानी वो 70 कोड़ा यानी ओघ की अपेक्षा, और उसके बिना एक समय वाला भी कम होगा तो अनुत्कृष्ट कहलाएगा। अब यहाँ जघन्य की बात हम देख रहे हैं, जो जघन्य नहीं है वह अजघन्य है, ये तो ओघ यानी सामान्य से कथन है। जब मार्गणाओं में देखेंगे तो उस मार्गणा की अपेक्षा जघन्य कितना हो सकता है किसी जीव को, उसको मार्गणा की अपेक्षा जघन्य कहा था, उसके स्वामित्व काल वगैरह हम देख आए हैं। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा जब कहते हैं तो जघन्य वाले कितने हैं अजघन्य वाले कितने हैं ऐसी चर्चा चलेगी। पहले वो फैक्ट क्या कहते हैं, तो जो जघन्य वाला है वो अजघन्य वाला नहीं है और जो अजघन्य वाला है वो जघन्य वाला नहीं है। तो अर्थपद क्या है, जो जघन्य स्थिति विभक्ति वाले हैं वे अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है, और जो अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले हैं वे जघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है, यहाँ स्थिति विभक्ति से सत्ता में जो मोहनीय कर्म पड़ा है उसकी स्थिति कितनी है उसकी बात यहाँ उसको कहते स्थिति विभक्ति। अब इस अर्थ पद के अनुसार निर्देश दो प्रकार का है। हाँ, कोई नहीं, उत्कृष्ट की अपेक्षा उसको अजघन्य को भी अनुत्कृष्ट कहेंगे। उत्कृष्ट की अपेक्षा अन्य सभी अनुत्कृष्ट है और जघन्य की अपेक्षा अन्य सभी अजघन्य है। उत्कृष्ट वाला भी अजघन्य कहलाएगा क्योंकि हमने देखा ना अनादि से अजघन्य ही है और जघन्य जाके क्षपक के अंत समय में होता है, क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय। तो यहाँ निर्देश यानी कथन दो प्रकार से होगा, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ यानी सभी जीवों की अपेक्षा, विभक्ति वाले सभी जीवों की अपेक्षा कथन होगा वो ओघ है, और आदेश यानी अन्य अन्य मार्गणाओं में जो कथन होगा जघन्य का अजघन्य का उसको कहेंगे आदेश की अपेक्षा। उनमें से ओघ की अपेक्षा कदाचित सभी जीव मोहनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है क्योंकि क्षपक सूक्ष्म सांप्राय तो कभी कभी हो गए, वो तो अंतर पड़ता है उसमें और वो भी अंत्य समय में होगा, कोई सूक्ष्म सांप्राय में भी होगा तो जीव वो अंत्य समय में नहीं है तो हम कहेंगे एक भी नहीं है, ये एक भंग हुआ। यहाँ स्थिति विभक्ति वालों की अपेक्षा कथन करना है, एक भी जीव स्थिति विभक्ति वाला नहीं, जघन्य स्थिति विभक्ति वाला नहीं है, इसका अर्थ है सभी जीव अजघन्य स्थिति वाले हैं। परंतु यहाँ कथन जघन्य की अपेक्षा चल रहा है इसलिए उसकी अपेक्षा तीन भंग जो बनेंगे वो बताएंगे। क्या कहते हैं कि कदाचित सभी जीव मोनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है, एक भंग हुआ। दूसरा, कदाचित बहुत से जीव मोनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है, वो ले रह गया बराबर करना। और एक जीव मोनीय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाला है, इसका अर्थ है एक ही जीव क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय में है। तो अनेक यानी बहुत जघन्य वाले नहीं है और एक जघन्य वाला है, ये दूसरा भंग हुआ। तीसरा भंग, कदाचित बहुत से जीव मोहनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है और बहुत से जीव मोहनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले हैं। बहुत से कहाँ, परंतु हमें तो पता है जब अल्प बहुत्व कहेंगे तो उसमें बहुत से का अर्थ ख्याल में आएगा क्योंकि क्षपक अधिक से अधिक कितने हो गए। हाँ, एक समय में, क्योंकि हमने एक समय में देखना है, भले 599 वहाँ टोटल होती है, 598 या 608 कहना है तो 608 भी कहते हैं, दो अपेक्षा से दो कथन आते हैं, पर सभी तो अंत समय में नहीं हो गए एट ए टाइम, लगातार हो गए तो 8 समय में विभाजित हो गए, वो भी एक समय में कितने अधिक से अधिक हो सकते, 108, उसकी बात यहाँ नहीं है, परंतु एक नहीं है तो अनेक है ऐसा कहेंगे हम। इस प्रकार जघन्य स्थिति विभक्ति की अपेक्षा तीन भंग होते हैं। हम जघन्य स्थिति विभक्ति की अपेक्षा कथन कर रहे हैं तब जघन्य वाले है ही नहीं, दूसरा है जघन्य स्थिति विभक्ति वाला एक है और बहुत से जीव जघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है, वह ऐसा नहीं कहा अजघन्य वाले है, हमें अजघन्य का नाम नहीं लेना, उसके तीन भंग अलग कहेंगे, अर्थ वही होगा, उनकी अपेक्षा से उनका नाम लेकर कहेंगे। तो वे अन्य तीन अर्थ तो वही का वही है फिर भी तीन भंग अलग से कहेंगे। इसी प्रकार मोनी की अजघन्य स्थिति विभक्ति अपेक्षा से भी तीन भंग होते हैं। इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थिति विभक्ति की अपेक्षा कथन करते समय विहत्या का पहले कथन करना चाहिए, वहाँ बहुत से जीव अविभक्ति वाले है ऐसा कहा था, यानी विभक्ति वाले नहीं है जघन्य में। यहाँ क्या कहेंगे? अजघन्य विभक्ति वाले है ऐसा कहेंगे। अर्थात जिस प्रकार जघन्य स्थिति की अपेक्षा कथन करते समय तीन भंगों में अविभक्ति वालों का पहले कथन किया है, उसी प्रकार अजघन्य स्थिति की अपेक्षा कथन करते समय तीन भंगों में पहले विभक्ति वालों का कथन करना चाहिए। कैसे करेंगे कथन पहले विभक्ति वालों का? पहला भंग कैसा होगा? अभी अजघन्य की विभक्ति की बात चल रही है, तो पहला भंग कैसा, वहां का पहला भंग पढ़ो। पहले ऊपर से चौथी लाइन में पहला भंग कौन सा था? कदाचित सभी जीव मोहिनी की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है। अब क्या कहेंगे? कदाचित सभी जीव मोहिनी की अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले है। दूसरा भंग, कदाचित बहुत से जीव मोहिनी की अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले है और एक जीव मोहिनी की अजघन्य स्थिति विभक्ति वाला नहीं है। और तीसरा भंग, कदाचित अनेक जीव मोहिनी की अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले है और अनेक जीव मोहिनी की अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है। मोहिनी की अविभक्ति वाले कौन सी? जघन्य अविभक्ति वाले, विभक्ति वालों में जघन्य की नहीं है ऐसा, परंतु अजघन्य है वो ऊपर के लेना ही नहीं है। विभक्ति वाले कहाँ तक हो गए? दसवें के अंत समय तक, यानी क्षपक के। वैसे ग्यारहवें वाले भी हो गए, परंतु हम क्षपक की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ऊपर जो बारवा है तेरवा है उनकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो स्थिति विभक्ति में आते ही नहीं है। जो स्थिति विभक्ति वाले है उनमें से लेना है। हाँ, किसकी अविभक्ति? जघन्य की अविभक्ति, यानी वो जघन्य नहीं है परंतु अजघन्य तो है। यहाँ ऊपर हमने अर्थपद क्या कहा था? जो जघन्य स्थिति विभक्ति वाले वो अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले नहीं है, और जो अजघन्य वाले वो जघन्य वाले नहीं है। इस इन दो वाक्यों के आधार से ही लेना है। यानी जब हम कहेंगे अजघन्य वाले नहीं है तो उसका अर्थ होगा वो जघन्य वाले है। वो नहीं है वाले वो बिल्कुल मूल प्रकृति की विभक्ति ही नहीं है, ऐसे वाले जीव नहीं लेना है। उनमें से चर्चा है। अब हम नीचे तक आए थे, नीचे से चौथी लाइन, इसी प्रकार ये जो कथन है ना, ऐसा ही कथन सातों पृथ्वियों के नारकी, आप कहेंगे कि वहां ये सूक्ष्म सांप्राय कहाँ है, उनके योग्य जो जघन्य होगा उसको हम जघन्य कहेंगे, जघन्य स्थिति विभक्ति। सातों पृथ्वियों के नारकी, सभी पंचेंद्रिय तिर्यंश, सातों पृथ्वियों के नारकी में जघन्य कब होती है स्थिति? पहले नरक में कब होती है जघन्य? असंगी में से उत्पन्न हुआ है और विग्रह के दूसरे समय में, तो वहां ऐसा भी होगा ना, कभी एक भी जीव नहीं है उसमें, क्योंकि असंगी में से उस समय नहीं आया हुआ कोई। ऐसा नहीं कि हर समय में असंगी में से कोई ना कोई आएगा, ये कोई जरूरत नहीं है। तो कहेंगे सभी अजघन्य वाले हैं। यानी ये जो हमने कथन किया इसे तीन और तीन छह भंग कहे, ऐसा ही कथन ये सातों ही नरकों में होगा। पहले नरक में तो हमने देखा असंगी में से आया हुआ, दूसरे से छठे तक के नरकों में जघन्य स्थिति कब हुई? उन नरकों के योग्य, हाँ, उत्कृष्ट आयु लेकर आया है और वहां जन्मते ही अंतर्मुहूर्त में प्रथमोपशम सम्यक या सम्यक तो प्राप्त किया है, फिर विसंयोजना की है, प्रथमोपशम लेना क्योंकि स्थिति कांडक करना है ना, हाँ, और आयु के अंत में जाकर आखिरी समय में हो तब उसका आयु जो उत्कृष्ट आयु है उसको जरूरी नहीं तभी मिथ्यात्व में लाने की, हाँ, क्योंकि उसका एक एक निशेक गलते जाएगा, तो जघन्य स्थिति उसके आयु के अंत में होगी, उत्कृष्ट आयु के अंत समय में। क्योंकि जितनी आयु उत्कृष्ट उतने अधिक निषेक गलेंगे, एक एक समय में एक एक निषेक गलेगा। और सातवें नरक में कैसे देखा था, जघन्य कब होता है, ऐसे ही उसने वहां गया है और फिर वहां सम्यक्त्व प्राप्त किया। अंत में अंतर्मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में गया, मिथ्यात्व में जाने के बाद भी जितनी स्थिति थी उससे भी कम बंद करता रहा, जितने काल तक शक्य है उतने काल तक, यानी वो अंतर्मूर्ति यथा योग्य। उसके बाद जितनी समान होगी उतना जो कुछ करेगा, तो उसके पहले वाला जो समय है तब हम कहेंगे वो जघन्य है। तो उसमें भी ऐसा ही कथन होगा, एक भी जीव ऐसा नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं उसने जघन्य की है, अधिक स्थिति बांध सकता है वो। तो ये कथन सातों नरकों के नारकियों में घटित होगा। सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच, तिर्यंचों में जघन्य कब होती है, एकेंद्रियों में से हत समुत्पत्तिक रूप से जो आया हुआ है। हाँ, सामान्य मनुष्य, यानी जरूरी नहीं कि हर वहां कोई जीव ऐसा होगा, इसलिए एक भंग तो वहां भी घटित होंगे। सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्यों में कब होगा, शपक सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय, पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी में भी वही है। ये तीन प्रकार के मनुष्य, सभी देव, सभी विकल इंद्रिय, जैसे नारकियों में हमने घटित किया था, देवों में घटित करना है तो भवनवासी और व्यंतरों में तो असंगी में से आया हुआ देव लेना, जिसका जघन्य होता है, और बाकी जो देव है ज्योतिषी से लेकर ऊपर तक, तो वहां तो वो सम्यक के साथ आया और बाद में उसने वो सब आयु के अंत तक। सर्वार सिद्धि में हमने घटित किया था क्षायिक सम्यक, तो दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया है और वहां उत्पन्न हुआ है, ऐसा जीव लेना, और आयु के अंत तक उसके एक एक निषेक गलते जाएंगे। सभी विकलेंद्रिय, विकलेंद्रियों में भी हमने देखा था एक इंद्रिय में से हत समुत्पत्ति करके आया हुआ जय। सभी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियों की अपेक्षा जब बात करेंगे तो क्षपक लेना है। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, ये याद है, हमने उत्कृष्ट की याद होगी शायद आप, देवों में से आया हुआ वो उत्कृष्ट था। अब जघन्य में तो ये तो एक इंद्रिय है तो समुत्पत्ति वाला। बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त। सभी त्रस, त्रसों में तो क्षपक लेना। पांचों मनुयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, यहां तक भी क्षपक लेने सब। वैक्रिक कायोगी, वैक्रिक कायोगी में जघन्य में जघन्य कब होता है, अभी हमने जो देखा था सौधर्म, सॉरी सर्वार सिद्धि वाला, कि जो क्षायिक सम्य दृष्टि है दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया है वहां पर, और आयु के अंत में उसका जघन्य होगा। तीनों वेद वाले, तीनों वेद वालों का जघन्य याद है, हाँ, अपने अपने नवे गुण स्थान में क्षपक के अपने अपने उदय का अंतिम समय। क्रोधादि चारों कषाय वाले, इन्हों में क्रोध उदय, क्रोध का जो वेदक काल कहते हैं उदय काल क्षपक के, उसका अंतिम समय लेना। विभंग ज्ञानी, विभंग ज्ञानी में जघन्य कब देखा था हमने, हाँ अंतिम समय में नवे ग्रहवेग का देव लिया था, क्योंकि ऐसे उसने वो सम्यक, क्योंकि नवा गुणस्थ है, सॉरी नवा ग्रहवेग है तो शुक्ल लेशा है, तो अंत कोड़ा कोड़ी से ही जन्मा है, और फिर उसने सम्यक विषय जो कुछ करके वो अंतिम समय तक आया है। यक्षाई करके तो नहीं आया है, क्योंकि विभंग ज्ञान में जाना है ना उसको, इसलिए उसको वेदक में रखना, और फिर अंत समय में मिथ्यात्व में आया, तो मिथ्यात्व में आया तो विभंग ज्ञान भी हुआ वहां पर, तो उसके वो जघन्य स्थिति होगी। अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी कब है, क्षपक में। संयत, वो भी क्षपक, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, नवे का अंतिम समय, क्षपक के नवे का अंतिम समय। परिहार विशुद्धि संयत, नहीं हमने देखा था ना पहले, अभी हमने जो सर्वार्थ सिद्धि में घटित किया था, ऐसा जीव मनुष्य में आया और फिर 38 साल तो पहले चले जाएंगे, फिर परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त करेगा और जब तक है उसका अंतिम समय ले लेना, तो हाँ अंतर्मूर्त में बाद में वो निर्माण पाएगा, ऐसा जीव लेना। संयता संयत, संयता संयत में भी देखा था, ये ऐसा परिहार विशुद्धि वाला संयता संयत में आता है, उसका भी संयता संयत का अंतिम समय लेना। चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, ये तीनों ही क्षपक सूक्ष्म सांप्राय लेने, जघन्य की बात कर रहे हैं हम। पीत आदि तीन लेशा वाले, पीत आदि तीन लेशा वाले में कैसे घटित, देव का अंतिम समय और फिर सातवें गुणस्थान में नहीं लेना था। लेश स्वामित्व निकालना, हमने कहाँ देखा था, पच्चीस पेज पे, अच्छा हाँ पीत लेशा। परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समान जानना चाहिए, वो तो परिहार विशुद्धि का जो अंतिम समय है उस समय उसके पीत वालों को पीत लेशा होनी चाहिए और पद्म वालों को पद्म होनी चाहिए। ऐसा ही हमने सर्वार्थ सिद्धि में गया, फिर वापस आया, फिर परिहार विशुद्धि वगैरह वगैरह। भव्य वही शपक, हाँ किसके, अच्छा पीत आदि तीन लेशा वाले, पीत और पद्म के लिए तो है, शुक्ल लेशा तो शपक लेना सूक्ष्म सांप्राय, भव्यों में भी वो सूक्ष्म सांप्राय वाला, सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि में भी वही है, वेदक सम्यक दृष्टि में कृतकृत्य का अंतिम समय। फिर संगी, संगी में भी वही लेना है, आहारक में भी सूक्ष्म सांप्राय वाला लेना। तो जैसा हमने ओघ में तीन तीन भंग किए थे, ऐसे ही भंग इन सभी जीवों में होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय कोई ना कोई उसमें जीव, एक भी नहीं होगा जघन्य वाला, तब ऐसे ही तीन तीन भंग हो गए। अब तिरियंचों में, पहले तो ओक से बताया और ओक के समान जहां कथन होता है वो भी बता दी बात। अब तिरियंचों में मोनिय की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले, जब तिरियंचों में जघन्य कहते, पहले पंचेंद्रिय तिरियंचों में हमने घटित किया था, अब यह तिरियंचों में जघन्य स्थिति कह रहे, और अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव नियम से है। पहले क्या कहा था, जघन्य वाले हो सकता है एक भी न हो, अब तिरियंचों में तो नियम से है, क्योंकि इतने अनंत तो एक इंद्रिय है वहां पर, तो उनमें हत समुत्पत्तिक वाले भी हो गए। इसी प्रकार सभी एक इंद्रिय, पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक अपर्याप्त सूक्ष्म, पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक पर्याप्त सूक्ष्म, पृथ्वी का एक अपर्याप्त जल का एक बादर, जल का एक बादर, जल का एक अपर्याप्त सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक पर्याप्त सूक्ष्म, जल का एक अपर्याप्त अग्नि का एक बादर, अग्नि का एक बादर, अग्नि का एक अपर्याप्त सूक्ष्म, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक पर्याप्त सूक्ष्म, अग्नि का एक अपर्याप्त वायु का एक बादर, वायु का एक बादर, वायु का एक अपर्याप्त सूक्ष्म, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक पर्याप्त और सूक्ष्म, वायु का एक अपर्याप्त, इनमें किस किस को छोड़ा है, बादर पर्याप्तों को नहीं लिया है सब जगह, है ना, हमने जो लिस्ट पढ़ी थी। अब आगे पढ़ते हैं, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, इसको भी पर्याप्त को छोड़ा। वनस्पति का एक निगोद, औदारिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयन, कृष्ण आदि तीन लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंज्ञ और आहारक जीवों के कहना चाहिए। यानी वो पर्याप्तों को जो छोड़ा है, वहां जो नियम से है, ये बात वहां नहीं घटित होगी। नियम से है जो बात बताई ना, तो अन्य सभी मार्गणाओं में घटित हो रहा है। सामान्य से बादर पृथ्वी का एक को लिया, पृथ्वी का एक को लिया, परंतु बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त को लिया, उसमें नियम से है, पृथ्वी का एक में होगा भी और नहीं भी होगा, पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त। लभ्य पर्याप्त मनुष्यों के उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले समान, अपर्याप्त को लिया है। फिर जलकायिक में भी ऐसा ही है, बादर जलकायिक पर्याप्त को नहीं लिया है, बादर अग्निकायिक के भी पर्याप्त को नहीं लिया है। वो तो नियम से जो लिखा ना, जघन्य स्थिति विभक्ति वाले नियम से है, ये बात वहां घटित नहीं होगी। यानी नहीं भी होंगे कोई जीव, जघन्य वाले नहीं भी होंगे, अभी हमने जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें लिया है, जो भंग वहां घटित हुए थे, कि कभी कभी ऐसा भी होगा ना, एक भी नहीं है, उनको वहां लिया था। देखो 56 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन, सभी पंचनी, फिर बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, और बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, ये सभी पर्याप्तों को वहां लिया था। दोनों भी है, कहा अनेक है, ये भी अनेक है, वो भी अनेक है, एक ही भंग होगा। नियम से है और है कहा, है एक, एक है ऐसा भी नहीं कहा, नियम से है, दोनों ही अनेक है, बस एक ही भंग होगा उनमें, और इनमें उसके तीन, इसके तीन, वैसे है तो तीन ही, कथन की अपेक्षा तीन और तीन छह ऐसे भंग हुए थे। अब लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में और अलग होगा, क्योंकि वो मार्गणा ही सांतर है, तो होगा तो एक का कोई होगा, या तो जघन्य होगा या अजघन्य होगा। यानी एक भंग ऐसा होता है एक जघन्य है, दूसरा होगा एक अजघन्य है, फिर एक जघन्य और अनेक अजघन्य, और एक जघन्य और एक अजघन्य, फिर वो अनेक पर घटित करना, इस तरह से आठ भंग हो गए उसमें, इसके चार उसके चार। यही बात लिखे, नीचे लिखे, देखो, लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों के उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति के समान यहाँ भी आठ आठ भंग है। वह हमने उत्कृष्ट में घटित किए थे, यहाँ जघन्य में भी ऐसे ही भंग हो गए, ख्याल में आता है। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य ऐसी मार्गणा है, कभी होती और कभी होती भी नहीं है। जब होती नहीं है तो जघन्य वाले भी नहीं है, अजघन्य वाले भी नहीं है, ऐसा होगा ना, और होगी तो एक ही जीव है उसमें, तो वो जघन्य भी हो सकता है, अजघन्य भी हो सकता है, या अनेक जीव, खाली जघन्य वाले होंगे या खाली अजघन्य वाले होंगे, या फिर उनका कॉम्बिनेशन होगा, एक जघन्य वाला एक अजघन्य वाला, एक जघन्य वाला अनेक अजघन्य वाले, फिर अनेक जघन्य वाले एक अजघन्य, और अनेक जघन्य और अनेक अजघन्य, ऐसे आठ भंग होगे उसमें। नहीं समझ में आया, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य क्या हमेशा होते हैं? नहीं होते। तो जब नहीं होंगे तब जघन्य भी नहीं है और अजघन्य भी नहीं है, कोई नहीं है। जब होंगे तो जघन्य वाला एक होगा, अजघन्य वाला नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जघन्य वाला नहीं और अजघन्य वाला है, तो एक है, ये एक है, ये है ही नहीं, या एक है ये है नहीं। दूसरा और क्या हो सकता है, ये एक है और ए भी एक है, यह एक है या दो यानी अनेक है, या ये दो है ये एक है, ये दो है ये दो है, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठवा, एक दो तीन चार पाँच, दोनों नहीं है कि लेना, दोनों दोनों है, एक का दो एक का एक, जीरो एक जीरो, हाँ जीरो एक जीरो अनेक रह गया, जीरो एक और जीरो अनेक रह गया था, ऐसे आठ भंग होंगे। अभी इसी ऑर्डर से नहीं, मैंने आगे पीछे लिखा है, वैसे आप समझ लेंगे। पहले जीरो जीरो वाले देखना, दोनों ओर जीरो जीरो, फिर जीरो एक और जीरो दो, फिर इसको एक रखना, एक जीरो एक एक और एक दो, और फिर यहाँ एक 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 दो, फिर दो एक और दो दो, दो यानी अनेक, ऐसे आठ भंग हो सकते हैं, जो हमने उत्कृष्ट में भी घटित करके देखे, ये जघन्य पर देख रहे हैं। हाँ, हमने अभी छप्पन पृष्ठ पर देखो, आठ भंग इस प्रकार है, वहां लिखा ना, मिला ऊपर से पांचवी लाइन, एक जो उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाला है, यहाँ जघन्य वाला है, अनेक उत्कृष्ट वाले हैं, यहाँ अनेक जघन्य वाले हैं, फिर एक जीव अनुत्कृष्ट वाला है, वहाँ अनेक जीव अनुत्कृष्ट वाले, यानी वो एक एक को ही लिया पहले, वैसे यहाँ जघन्य और अजघन्य वाले लेना, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन लेना। अब यहाँ आते हैं, इसी प्रकार 57 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन, इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी, क्योंकि यह भी मार्गणा ऐसे सांतर है, अंतर पड़ता है तो कितना पड़ता है, जगन वैकृत मिश्र 12 मुहूर्त, जगन्य एक समय से लेकर उत्कृष्ट 12 मुहूर्त तक, आहारक का योगी आहारक मिश्र का योगी, इनमें भी अंतर पड़ता है। अपगत वेदी, हाँ उसमें भी क्षपक की अपेक्षा 6 महीने का, और वहां पर हाँ उपशम श्रेणी की अपेक्षा भी वहां अलग घटित होता है, परंतु जब अपगत वेदी में जघन्य कहेंगे तो क्षपक श्रेणी में ही घटित करना है, क्योंकि वहां अजघन्य रहेगा हमेशा उपशम श्रेणी में। अकषायी, अकषायी तो 11वें गुणस्थान की अपेक्षा जो जघन्य है उसको लेना है। सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, क्षपक का अंतिम समय, यथाख्यात संयत 11वें वाला लेना है। उपशम सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि में जघन्य कब होता है याद है, कैसे अंत में, उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा है और उपशम में से जब वेदक होगा तो उपशम के अंत समय में उसकी जघन्य होती है स्थिति। सासाधन सम्यक दृष्टि, यह भी सांतर मार्गणा है, उसके भी अंत समय में होता है। और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, सम्यक मिथ्या दृष्टि में भी जघन्य कब होता है, सम्यक में से 24 की सत्ता वाला जब आया है तो सम्यक मिथ्यात्व के अंत समय में, उत्कृष्ट कब देखा था हमने, मिथ्यात्व में से आया हुआ जीव लिया और वो पहले समय में लिया था, तो इसमें भी ऐसे ही होगी कि एक भी जीव नहीं है, हो गए तो हाँ, क्योंकि दूसरा यथाख्यात में तो विभक्ति ही नहीं होती, जैसे हमने अकषायी में लिया था वैसे यथाख्यात संयत में भी 11वां ही गुणस्थान लेना है, क्योंकि अपना विषय क्या है, विभक्ति वाला है, जिनका क्षय हुआ है उनकी बात ही नहीं यहाँ पर। विशेषार्थ, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा, भंग विचय का कथन करते समय ओघ और आदेश से जिन भंगों को पहले बतलाए हैं, वे भंग यहाँ जघन्य और अजघन्य स्थिति की अपेक्षा भी उसी प्रकार बन जाते हैं। किंतु सामान्य तिर्यंच और एकेंद्रियों से लेकर अनाहारक तक मूल में गिनाई हुई कुछ मार्गणाएं ऐसी हैं जिनमें जघन्य स्थिति वाले बहुत जीव और अजघन्य स्थिति वाले बहुत जीव नियम से पाए जाते हैं। यह ऐसा नियम वहाँ नहीं था। यहाँ एकेंद्रियों में जघन्य होता है इसलिए बहुत से जीव वहाँ पाए जाएंगे। अतः यहाँ मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले नाना जीव नियम से है, ये एक कथन हुआ। जघन्य की अपेक्षा कहा, जघन्य की विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले। दूसरा कथन कैसा होगा? अजघन्य की स्थिति विभक्ति वाले और अविभक्ति वाले जीव नियम से है। कहने के लिए दो है परंतु कथन तो एक ही है। एक को मुख्य करके बताया, उसका नाम लिया, दूसरे समय दूसरे का नाम लिया। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय अनुगम समाप्त हुआ। भागा भागानुगम दो प्रकार का है। भागा भाग कहते हैं तो टोटल जीवन से कितने भाग प्रमाण है ऐसा कथन आता है, उसको भागा भाग कहते हैं। और अल्प बहुत तो उसे कहते हैं, पहले कम से कम कितने हैं और फिर दूसरे जो है वो उससे कितने गुना है, कितने अधिक है, वो कथन आता है। तो भागा भागानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। यानी जघन्य के बारे में भागा भाग और उत्कृष्ट के बारे में भागा भाग। उनमें से उत्कृष्ट भागा भाग अनुगम का प्रकरण है। जैसे हमने पहले उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति की बात देखी थी, ऐसे तो उत्कृष्ट की जब बात करेंगे तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट में कितने भाग प्रमाण है, टोटल जीवों के कितने भाग प्रमाण है, ऐसा कहेंगे। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं, तो कहते अनंत वे भाग हैं। टोटल जीवों की अपेक्षा लेने अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं, अनंत बहुभाग हैं। इसी प्रकार जब ये अनंत वा भाग और अनंत बहुभाग ऐसा कथन कहाँ कहाँ घटित होगा? जहाँ जहाँ जीव अनंत है वहाँ वहाँ, जिन जिन मार्गणाओं में, यानी वो एकेंद्रीय है, निगोध है, वो जीव जहाँ है वहीं पर अनंत घटित होगा। अन्यथा अन्य मार्गणाओं में असंख्यात का असंख्यात वा भाग और असंख्यात बहुभाग होगा। तो ये अनंत की बात कहाँ कहाँ घटित होती है? सभी इसी प्रकार तिर्यंच, सभी एकेंद्रिय, वनस्पति कायिक, निगोध जीव, काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कारमाण काय योगी, नपुसक वेद वाले, क्रोधादि चारों कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शन वाले, कृष्ण आदि तीन लेशा वाले, भव्य अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंगी, आहारक और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। इन सभी में वो अनंत वाले निगोद राशि है, आती है, इंक्लूड होती है। इसलिए अनंत वा भाग और अनंत बहुभाग ये बात घटित होती है। अब आदेश निर्देश की अपेक्षा, आप कहेंगे ऊपर जो है वो आदेश ही है, मार्गणा ही है, परंतु उन मार्गणाओं में ये अनंत और अनंत वा भाग वगैरह घटित होता है। अब आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में, अब नारकी है कितने? असंख्यात। तो नारकियों में मुनि की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? जब सब जीव कहते तो सब नारकी समझना। ओघ में सब जीव कहते तो मुनि की स्थिति विभक्ति वाले सब जीव समझना। तो असंख्यात वे भाग हैं। अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? असंख्यात बहुभाग है। इसी प्रकार ऐसा ही कथन असंख्यात भाग और असंख्यात बहुभाग सातों पृथ्वियों के नारकी सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य मनुष्य लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य सामान्य देव भवनवासियों से लेकर अपराजित तक के देव सभी विकलेंद्रिय सभी पंचेंद्रिय सभी पृथ्वी कायिक सभी जल कायिक सभी अग्नि कायिक सभी वायु कायिक बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त सभी त्रस पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी वैक्रिय कायोगी वैक्रिय मिश्र कायोगी स्त्री वेदी पुरुष वेदी विभंग ज्ञानी आभिनिबोधिक ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी संयता संयत चक्षु दर्शन वाले अवधि दर्शन वाले पीत आदि तीन लेशा वाले सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि उपशम सम्यक दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या असंख्यात है और उनमें उत्कृष्ट वाले वो असंख्यात वे भाग है और अनुत्कृष्ट है वो असंख्यात बहुभाग है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियोमे, अब इनको अलग क्यों लिया? सामान्य मनुष्यों को तो वहां लिया था लब्धि पर, हाँ इनकी संख्या ही संख्यात है। इनमें मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है? सब जीव ने वो मनुष्य पर्याप्तों के कितने भाग है? तो संख्यात वे भाग है। अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है? संख्यात बहुभाग है। अपराजित यहाँ कहाँ आया? आगे है ना, अभी 58 पेज में नीचे से। अच्छा अच्छा, सामान्य देव भवनवासियों से लेकर अपराजित के देव, हाँ सर्वार्थ सिद्धि के जीव संख्यात होते हैं, इसलिए उनको छोड़ा। बाकी सभी देव अपने अपने जो कुछ वो असंख्यात होते, भवनवासी अंतर ज्योतिषी और प्रत्येक स्वर्ग में असंख्यात देव है। तो अपराजित ने वो अनुत्तर में से अन्य चार सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर बाकी चार। तो क्योंकि वहां की संख्या संख्यात है और उसमें संख्यात वाभाग और संख्यात बहुभाग, तो अभी हम सबको 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कराते हैं ना, ये उत्कृष्ट तो थोड़े ही लोगों को कहा। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव, यहाँ जो सर्वार्थ सिद्धि को लिया है वहां जो उत्कृष्ट कहा उनके योग्य उत्कृष्ट लेना, ऐसा नहीं कहना कि बाकी जीवों की अपेक्षा, क्योंकि वहां जाने वाले जो जीव है उनमें उत्कृष्ट किसके होगा? तो वहां जब अंत कोड़ा कोड़ी होती है तो पहले समय में उत्कृष्ट होगा, बाद में तो घटते चला जाएगा। आहारक का योगी, देखो इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव, अब ऐसी मार्गणा है जहां जीव ही संख्यात होते हैं। आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेद वाले, अकषायी, मनपर्य ज्ञानी, संयत सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। अब विशेषार्थ, भागा भाग में कौन किसके कितने भाग प्रमाण है इसका विचार किया जाता है। प्रकृत में सामान्य रूप से और विशेष रूप से उत्कृष्ट स्थिति और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव किसके कितने भाग है यह बतलाया गया है। लोक में जितने उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वाले जीव है उनमें लोक क्या पता है, किन जीवों की संख्या, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट मिलके जितनी संख्या होती है, यानी वो सारे विभक्ति वाले लेना है, उनमें से अनंत वे भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाले हैं और अनंत बहुभाग अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हैं। मार्गणाओं की अपेक्षा, ये तो ओघ की अपेक्षा, लोक में जितने जीव है उसकी बात है। तो आप कहेंगे लोक में सिद्ध भी है अरिहंत भी है, उनकी बात नहीं, वो तो विभक्ति में आते ही नहीं है। जो विभक्ति वाले हैं उनमें ये बात चल रही है। मार्गणाओं की अपेक्षा उनकी प्ररूपणा, प नहीं दिख रहा है जरा बड़ा, उनकी प्ररूपणा तीन प्रकार से की जाती है, तीन प्रकार से हो जाती है। कुछ मार्गणाओं में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति वालों की प्ररूपणा ओघ के समान है, उन्होंने वो लिस्ट बता दी थी। कुछ मार्गणाओं में असंख्यात विभाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाले और असंख्यात बहुभाग अनुत्कृष्ट स्थिति वाले होते हैं। जिन मार्गणाओं में टोटल संख्या ही असंख्यात है उनकी ये बात है। तथा कुछ मार्गणाओं में संख्यात विभाग प्रमाण जीव उत्कृष्ट स्थिति वाले और हुआ और संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव अनुत्कृष्ट स्थिति वाले हैं। उसको उसमें हमने पर्याप्त मनुष्य मनुष्यनी और सर्वार सिद्धि आहारक आहारक मिश्र वगैरह वगैरह मार्गणा देखे। इन सब मार्गणाओं के नाम मूल में गिनाए ही है। इसी प्रकार जघन्य और अजघन्य स्थिति वाले जीवों के भागा भाग का खुलासा समझना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट भागा भाग समाप्त हुआ। खुलासा विशेषार्थ के लिए उन्होंने विशेषार्थ अलग नहीं लिखेंगे, इसलिए ये वाक्य यहाँ डाला है। जघन्य की बात अब बताने वाले हैं, पर जघन्य के लिए एक्सप्लेनेशन भी ऐसा ही है। सातवें आठवें पृष्ठ पर जो अनुयोगों की चर्चा की थी उसका नाम हमने 26 नंबर ऊपर डाला था, क्योंकि 24 तो अनुयोग द्वारों के नाम बताए थे और च शब्द के द्वारा अध्याच्छेद जो पहला लिया उन्होंने, पहले समझाया था अध्याच्छेद निकालना 8 पेज। देखो सातवें से जो शुरू होते हैं सभी जो अधिकारों के नाम बताए, उसमें से अभी हमने क्या क्या देखा, सर्व विभक्ति नौ सर्व विभक्ति, उत्कृष्ट विभक्ति अनुत्कृष्ट विभक्ति, जघन्य विभक्ति अजघन्य विभक्ति, सादी विभक्ति अनादि विभक्ति, ध्रुव विभक्ति अध्रुव विभक्ति। उसके पश्चात इनके बारे में एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, फिर काल और अंतर, ये तीनों ही एक जीव की अपेक्षा लिए, 13 हुए। फिर नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय देखा, तो उसमें भी हमने उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट का इसे अलग अलग किया। अब उसके बाद यहाँ भागा भाग देख रहे हैं हम, अध्याच्छेद तो पहला ही, सबसे पहले हमने अध्याच्छेद को देखा था, अब भागा भाग देख रहे हैं। तो ये अध्याच्छेद भागा भाग और भाव अनुयोग, ये तीन जो नाम है वो च शब्द में से निकले हैं। नीचे का पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, उसमें लिखा है दूसरे वो सात जहां आंकड़ा लिखा है उसके चौथी लाइन में, उपर्युक्त अनुग द्वारों में अनुक्त है, जो नहीं बताए जिनके नाम नहीं लिए है, ऐसे कौन कौन है, अध्याच्छेद अनुयोग द्वार, भागा भाग और भाव अनुयोग द्वार। अभी जो आप पढ़ रहे थे ना उसका नीचे का पैराग्राफ था, उसकी चौथी लाइन, तीन नाम आए, अध्याच्छेद हम पहले ही देख चुके और अभी भागा भाग देख रहे हैं। अध्याच्छेद बिल्कुल शुरू, अध्याच्छेद का प्रक्रम है उसी पृष्ठ पर, वहां पूछा भी था कि अध्याच्छेद यहाँ क्यों बता रहे हैं, तो वहां कहते वो अध्याच्छेद कितना है, उत्कृष्ट है जघन्य, यानी उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण, वो मालूम नहीं होगा तो बाकी के अनुयोग द्वार ही नहीं बनेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये भागा भाग अनुगम को हमने 26 नंबर दिया था। अब हम आते हैं, अब जगन्य भागा भाग का प्रकरण है, 59 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। अभी हम उत्कृष्ट में देख रहे, अभी भागा भागे गए ना, कितने भाग प्रमाण है इतनी बात लेनी। ओघ निर्देश और आदेश निर्देश, उनमें से ओघ निर्देश की अपेक्षा मौन्य की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव सब जीवों के अनंत कितने भाग है। यहाँ तो ओघ की अपेक्षा जब लेते हैं तो क्षपक सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय वाला जीव लेना, तो कहते अनंत वे भाग है। और मौन्य की अजगन्य स्थिति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है, अनंत बहुभाग है। तो ये जो अनंत का जो भाग बनता है वो कहाँ कहाँ होगा, इसी प्रकार काय योगी, औदारिक काय योगी, नपुसक वेद वाले। अब नपुसक वेद वालों में जो जघन्य होगा वो कहाँ होगा, हाँ, नव्या गुणस्थान क्षपक है उसके, नपुसक वेद के उदय का अंतिम समय में। फिर भी ये अनंत भाग और अनंत बहुभाग वहां भी घटित होगा। देखो यहाँ किसी एकेंद्रिय को नहीं लिया है, और उसको नहीं लेते हुए जहां ये क्षपक आता है, क्योंकि हमको ओघ की अपेक्षा बात करनी, जब तिरियंचों की बात होगी तो वो जगन्य वाले भी अनंत होंगे वहां पर। समझ में आता क्या कहना चाहते हैं? यहां जब ओघ की अपेक्षा जगन्य कहते हैं तो सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय है, और यहां जो नपुसक वेद में घटित किया है वो नपुसक वेद का उदय का अंतिम समय क्षपक में लिया, परंतु सारे एकेंद्रिय जो अनंत है वो तो नपुसक वेद में आते हैं। जब नपुसक वेद कहेंगे तो सारे एकेंद्रियों से लेकर वो सभी जीव उसमें आ सकते हैं, इसलिए उनमें ये अनंत का प्रमाण घटित होता है, इतनी बात उसमें लेनी है। वैसे ही क्रोधादि चारों कषाय वाले, उनमें हमने देखा था कब होता है जगन्य, अपने अपने उदय का अंतिम समय क्षपक में। अचक्षु दर्शन वाले, ये सारे अचक्षु दर्शन वाले है ही, और अचक्षु दर्शन वालों में एकेंद्रिय आते हैं इसलिए वो भी अनंत घटित होता है। भव्य, क्योंकि ओ की अपेक्षा भव्यों में ही जगन्य घटित होगा, दसवा गुणस्थान। आहारक, आहारक कहेंगे तो वो एकेंद्रिय भी आहारक है, एकेंद्रिय भी वो भव्य है, इसलिए वहां अनंत वाली बात घटित होती है, परंतु यहाँ एकेंद्रियों को नहीं लिया, क्योंकि एकेंद्रियों में वो ओघ की अपेक्षा वाला सूक्ष्म सांप्राय घटित नहीं होता। अनंत तो घटित होता है परंतु वो बात घटित नहीं होती, इसलिए उसको यहां नहीं लेना। अब आगे आदेश निर्देश की अपेक्षा, जब आदेश निर्देश कहेंगे तो उस मार्गणा में जो बात है उसको लेंगे, वहां भी अनंत की बात घटित होगी, जहां कहां घटित होगी उसको देखते हैं अभी। आदेश निर्देश की अपेक्षा नारकियों में, पहले नरक गति में बात कर रहे हैं, मौन्य की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव, विवक्षित जघन्य और अजघन्य स्थिति वाले नारकी जीवों के कितने भाग है, तो कहते असंख्यातवे भाग है। नारकियों में जघन्य हमने देखा तो असंगी में से आए हुए, टोटल नारकियों में वो लेना, असंगी में से आया हुआ दूसरा समय विग्रह का। तथा अजगन्य स्थिति विभक्ति वाले नारकी जीव कितने भाग है, असंख्यात बहुभाग है। ये तो आसान है समझने में। इसी प्रकार यही कथन सातों पृथ्वियों के नारकी, भले वो असंगी में से नहीं आए हैं, फिर अपना अपने नरक में जो जघन्य जहां बनता है अंतिम समय में हमने घटित किया था सातवें नरक में अंतिम अंतर मुहूर्त में, तो वो कितने है, तो असंख्यातवे भाग है और बाकी असंख्यात बहुभाग है। सभी तिर्यंच, सभी तिर्यंच होते हैं अनंत, फिर भी वहाँ जघन्य भी बहुत है, इसलिए वो असंख्यात बहुभाग और असंख्यात स्वभाग किया। सामान्य मनुष्य, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासियों से लेकर अपराजित तक के देव, जहाँ जहाँ असंख्यात संख्या घटित होती है। हाँ आप कहेंगे सभी तीर्यंच लिए है तो उसमें एकेंद्रिय क्यों नहीं आते? एकेंद्रिय आएंगे, परंतु वहाँ हमने देखे थे, वहाँ तो जघन्य वाले भी अनंत हो गए और अजघन्य वाले भी अनंत। वही तो असंख्यात बहुभाग है, अनंतों का असंख्यात बहुभाग करो और असंख्यात अभाग करो। अनंत का भाग दे दो ना, अनंत को असंख्यात का भाग दे सकते हम? हाँ ख्याल में है ना। फिर से एकेंद्रिय लेते हैं या सभी चित्तीर्यंच लेते तो संख्या कितनी है? अनंत है। फिर भी यहाँ कथन क्या है कि जघन्य कितने हैं? असंख्यातवे भाग है। तो अनंत का असंख्यात भाग हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि एकेंद्रियों में सारे जघन्य पड़े हैं ना, जिन्होंने जिन्होंने हत समुत्पत्ति किए हैं वो सारे जघन्य में आते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है, अनंत का असंख्यात भाग है। और टोटल जीवों के असंख्यात बहुभाग है वो अजघन्य है। हाँ अनंत टोटल जीवों के कितने भाग है, इतना ही प्रश्न है। उनका प्रमाण कितना है कहेंगे तो अनंत आएगा, वो परिमाण अनुयोग द्वार में चला जाएगा। ख्याल आया? तो इसलिए सभी तिर्यंच चूंकि अनंत है, उसका असंख्यात भाग जघन्य है, अनंत का असंख्यात भाग जघन्य है, और असंख्यात का अनंत का असंख्यात बहुभाग अजघन्य है। ख्याल आया कि नहीं आया? देखो आप ऐसा भी है, उसके लिए दूसरा कोई उदाहरण लेंगे हम। हमारे पास 500 है तो उसको हम असंख्यात के लिए हम कितना लेना चाहते हैं इसमें से? सवा भाग यानी असंख्यात भाग लेंगे, इसको 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो एक भाग क्या होगा? जघन्य। तो एक भाग 100 से भाग देने पर 5 आए ना, उसमें से एक भाग यानी 100 जीव अजघन्य हुए, और बहुभाग यानी 4 जीव अजघन्य हुए। अभी इतना ही 100 का भाग हम 50 लाख को दे सकते हैं कि नहीं? या तो 500 को दिया तो 50 लाख को भी 100 का भाग देंगे तो उस प्रोपोर्शन में उनका डिवीजन होगा। एकम दहम शतम सहस्र दश सहस लक्ष दश लक्ष, 50 लाख लिए ना, 100 का भाग देंगे, 2 जीरो गए, तो 50,000 जो है वो जघन्य हुए, और बाकी कितने रहे? 50 लाख में से 50,000 निकाल दो, 49.5 लाख, वो बहुभाग होगा। तो 100 के बदले असंख्यात कहो और ये 50 लाख के बदले हम अनंत कहेंगे, तो अनंत को असंख्यात का भाग देंगे। अब यहाँ 50,000 और 49.5 लाख ऐसा होगा ना, तो वैसे वहां भी होगा अनंत में। इसलिए टोटल जीव अनंत होते हुए भी असंख्यात भाग और असंख्यात बहुभाग, ये कथन तो उस वहां भी हो सकता है। असंख्यात का भाग बड़े असंख्यात को भी जा सकता है और अनंत को भी दे सकते हैं, केवल वो असंख्यात बहुभाग और असंख्यात भाग, ये कथन जहां संख्यात ही संख्या वहां घटित नहीं होगी। तो सभी तिर्यंच लिए आगे बढ़ेंगे। सामान्य मनुष्य, क्योंकि सामान्य मनुष्य असंख्यात होते हैं, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, सामान्य देव, भवनवासी से लेकर अपराजित तक के देव, क्योंकि सर्वार सिद्धि में संख्यात होते हैं, सभी एकेंद्रिय। अभी देखो एकेंद्रिय लिए सभी, तो एकेंद्रिय है अनंत, और अनंत का जो असंख्यात वा भाग है वो जघन्य है, यानी जघन्य भी कितने हो गए। मार्गणाओं की बात है ना, एकेंद्रियों की अपेक्षा जो जघन्य कहले में आता है, तो एकेंद्रियों के असंख्यात वे भाग तो हत समुत्पत्ति किए हुए हैं, उनकी संख्या भी अनंत होगी। सभी विकलेंद्रिय, क्योंकि एकेंद्रियों में से करके आए हैं, सभी पंचेंद्रिय, वह भी ये घटित होता है, या सभी पंचेंद्रियों में वो तो पंचेंद्रिय असंख्यात है, और उसके क्षपक वाले वो है वो तो थोड़े है, वो असंख्यातवा भाग कहेंगे। छहो काय वाले, यहाँ भी ये बात घटित होगी, छहो काय वाले आप कहेंगे त्रस तो ठीक है असंख्यात है, परंतु पांच स्थावर काय जब सब लेते हैं, के एक वनस्पति काय छोड़कर बाकी भी असंख्यात असंख्यात है, परंतु वनस्पति काय अनंत है, निगोद अनंत है, उसमें कैसे घटित होगा। हाँ। तो यही ऐसा ही घटित होगा। हाँ। पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी, उसमें तो सूक्ष्म सांप्राय वाला लेना, औदारिक मिश्र काय योगी, एक शब्द है, औदारिक मिश्र का योगी वाले भी एकेंद्रियों में मेजॉरिटी है, उनकी अपेक्षा यहाँ भी ले सकते हैं। वैक्रियक कायोगी में जो जघन्य बनता है, जो हमने घटित किया था, वो असंख्यात वे भाग में घटित होगा। वैक्रियक मिश्र कायोगी में भी हमने देखा था, वैक्रियक मिश्र कायोग के अंत में जाकर जघन्य होता है, पहले से वो घट कर आया है। कार्मण कायोगी त्रिवेदी, वो कार्मण कायोगी भले अनंत जीव है, अभी जो एकेंद्रियों में कार्मण कायोगी वाले हैं, हत समुत्पत्तिक वाले, वो असंख्यात्वा भाग ले लेना। स्त्रीवेदी पुरुषवेदी, उन्होंने उनमें तो अपना अपना वेद का अंतिम समय लेना। मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी विभंग ज्ञानी, मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी होते अनंत है, परंतु उनमें वो एकेंद्रिय की अपेक्षा घटित करेंगे। विभंग ज्ञानी है ही असंख्यात, और उसमें असंख्यात वा भाग वो जघन्य वाले हो गए। अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी, इनमें भी वो क्षपक वाले लेना जी। मन परे ज्ञानियों को क्यों छोड़ा? हाँ, वो संख्यात होते हैं। हाँ। क्योंकि जब अगर संयत लेंगे तो भी संख्यात हो जाएंगे, तो इसे संयता संयतों को लिया। तिर्यंश तो असंख्यात है, संयता संयत वाले। असंयत, अब असंयत तो उसमें एकेंद्रिय भी आते हैं, परंतु वही अपेक्षा पहले वाली। चक्षु दर्शन वाले, और चक्षु दर्शन वाले तो हमने अनंत वा भाग अनंत बहु भाग लिया था। अब चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, छहो लेशा वाले, पहले भी बात आई थी ना ये। हाँ, छहो काय वाले आए थे, यहाँ छहो लेशा वाले आए। छहो यानी अपनी अपनी लेशा में लेना ना, अलग अलग छहो की मिलकर लेना नहीं है, जैसे हाँ हाँ शुभ लेशा वाले होते ही असंख्यात, असंख्यात में भी असंख्यात वा भाग और असंख्यात, और अनंत जहाँ घटित होते हैं उनमें भी घटित तो ऐसे ही करना है। कृष्ण नील कपोत में अचक्षुदर्शन, देखो एक आपका प्रश्न ऐसे है, अचक्षु दर्शन में तो हमने अनंत बहुभाग और अनंत वा भाग देखा था, क्योंकि अचक्षु दर्शन में जघन्य कब होता है? दसवें के अंत समय में। और षट कायिक में जब हम कहेंगे छह काय वालों में तो वहां छह कायों में त्रस कायिक तो होते ही असंख्यात है, और बाकी अन्य जो एक एक काय वाला अलग लेंगे, पृथ्वी काय अग्नि काय, तो होते असंख्यात है, उनमें भी असंख्यात बहुभाग वगैरह, वनस्पति काय अगर लेंगे अलग से वो अनंत होते हैं, उसमें भी असंख्यात भाग होगा, क्योंकि मेजॉरिटी तो वनस्पति कायकों में ही पड़े हैं। देखो छह काय वाले कहते हैं तो पांच स्थावर काय अलग अलग गिनना, पांचों को मिलकर नहीं गिनना, क्योंकि छह भेद करने हैं ना हमको। तो त्रस काय वाले अलग हुए, अकेले पृथ्वी काय वाले भी असंख्यात है, अकेले जल काय, अकेले अग्नि काय, अकेले वायु काय असंख्यात असंख्यात है, और वनस्पति काय अनंत है। परंतु वो अनंत होते हुए भी हाँ, तो वो हत समुत्पत्तिक वाले बहुत है उसमें, तो असंख्यात तो बाभाग और असंख्यात बहुभाग यही प्रोपोर्शन वहां भी रहेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं वो छह लेशा वाले अभी हमने देखा था, छह लेशा में भी ऐसा ही घटित होगा। एक इंद्रियों में तो तीन अशुभ लेशा होती है और उनकी मेजोरिटी भी ज्यादा है, तो वहां तो घटित होगा ही होगा। और पीत पद्म और शुक्ल लेशा वालों में जो है हाँ, तो उसमें भी यही बात घटित होगी, असंख्यात की बात घटित होगी। अभव्य हाँ, अभव्य होते अनंत है, उसका असंख्यात वा भाग वो हत समुत्पत्ति पड़े जघन्य के। अभव्यों में जघन्य किसका होगा? देखिए अभव्य कहां से कहां तक है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। वो पंचेंद्रिय वाला ऊपर के गुणस्थान तो लेने नहीं है, अभव्यों का एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में पंचेंद्रियों का इतना जघन्य हो नहीं सकता। वो तो हत्ता समुत्पा उसमें से जाने वाले पंचेंद्रिय भी हो सकता है एक समय में, परंतु यहाँ तो मेजॉरिटी लेनी है ना, तो एक इंद्रियों में ही पड़े हैं। असंख्यात भाग हाँ, अनंत का असंख्यात भाग अभव्य में वही तो घटित होगा। अरे बहुत हो गए ना, अभव्यों में पंचेंद्रियों में भी अनंत हो गए, अनंत नहीं परंतु उस अनंत में से निकलकर पंचेंद्रिय में भी आएंगे ना। असंख्यात राशि तो त्रस में पड़ी है उसकी। अभव्य कितने हैं? अनंत है। अभी अभव्यों में भी एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव है कि नहीं है? स्वर्गों में है कि नहीं? ग्रेवेक तक। नरकों में होंगे ही, उसमें कुछ नवाई नहीं है। हाँ अभव्य है अनंत, नहीं नहीं आपका ऐसा नहीं है, जो पहले से ही अभी नित्य निगोद में हत समुत्पत्ति खोगे कि नहीं हुआ, उन्होंने तो कभी ज्यादा की नहीं है, फिर भी उनके योग्य जो कोई अधिक से अधिक स्थिति और कम से कम स्थिति। हत समुत्पत्ति कहते कब है, जो ज्यादा स्थिति थी और उसके घात की। अब अनादि से जो निगोद में ही पड़े हैं, तो उनके योग्य जो कोई जो थोड़ी वेरिएशन है स्थिति में, उतने में उसका चलता रहेगा। हमने देखे थे ना, एक सागर से लेकर उसका पल्ले का असंख्या तो बहुत कम, इतने जो बंद के वेरिएशन से उतना उसका बंद होता है, और स्थिति में भी उतनी वेरिएशन होती चली जाएगी। अभव्य फिर सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि है असंख्यात। जब सम्यक दृष्टि कहेंगे तो जघन्य तो सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय लेना शपक, क्षायिक सम्यक दृष्टि में भी है ऐसा ही, क्योंकि वे है असंख्यात। कौन से गति में असंख्यात है? हाँ देव मनुष्य और नारकी सभी में असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि है। नरक में तो पहले नरक में होते है मनुष्य, कहा मैंने देव तीरियंच और नारकी कहना है मुझे, मैंने भूल से मनुष्य कह दिया। हाँ नरक में भी इतने हैं, पहले नरक में ही हो गए, नीचे तो हो गए नहीं क्षायिक समय दृष्टि, तो पहले मनुष्य में से ही वहां जाते हैं, और मनुष्य तो संख्यात है, वे ही मरकर वहां जाएंगे, फिर भी वहां की आयु जो है कितनी है? मैं पहले नरक की पूछ रहा हूं, सम्यक दृष्टि की। हाँ पल्ले का संख्या तो क्या संख्या तो बहुत कम सम्यक दृष्टि की, और सम्यक दृष्टि की जघन्य आयु पहले नरक की 84,000 वर्ष, उससे कम नहीं हो। 10,000 वाला वो सम्यक दृष्टि नहीं बांधेगा वहां के। हाँ ये बात पहले आई थी ना, इसी में आई कि थी क्या दूसरी प्रकृति विभक्ति में आई थी बात। हाँ कम से कम, और वो सागर में भी कम होती है। सागर में मेरे ख्याल से पल्ले का असंख्या तो है, संख्या तो भाग कुछ कम है ऐसा मुझे, असंख्या तो भाग कम। अच्छा कहाँ देखेंगे, दूसरे भाग में है, मिलेगा अभी पीछे लिखा है। वहाँ सम्यक के साथ जन्मने वाला तो क्षायिक ही होता है, जो वहां जाने के बाद वेदक सम्यक या प्रथम उपशम करेगा उसकी तो पूरी हजार सागर, एक सॉरी एक सागर की होगी पूरी। हाँ हाँ 10,000 वर्ष की भी हो सकती है, यानी जो मिथ्यात्व में वहां जन्मा है वो 10,000 वर्ष से लेकर एक सागर तक की उसकी आयु हो सकती है। परंतु जो क्षायिक सम्यक या वेदक सम्यक में यानी कृतकृत्य वेदक में गया है उसकी आयु कितनी होगी कम से कम और अधिक से अधिक, तो कम से कम तो हमने देखा 84,000 वर्ष। मुझे तो पीछे नहीं लिखा है मैंने, टू फिफ्टी सेवन की अपेक्षा आती है। देखो यहाँ दूसरी पुस्तक में 257 258 में में ऊपर लिखा है। हाँ हाँ जघन्य 21 विभक्ति स्थान का कितना काल है ऐसा वहाँ प्रश्न था। जघन्य अंतर्मूर्त कम 84,000 वर्ष, जघन्य क्योंकि अंतर्मूर्त वो कृतकृत्य का उन्होंने घटाया। 21 विभक्ति स्थान पूछा था ना, 21 कब होती है कृतकृत्य के बाद 21 हो जाती है। और उत्कृष्ट तीसरी चौथी लाइन 257 पृष्ठ दो आपके पास दो नंबर पुस्तक है। हाँ उत्कृष्ट पल्लोपम के असंख्यातवे भाग कम एक सागर, टू फिफ्टी सेवन पृष्ठ पर। हाँ क्षायिक समय दृष्टि की प्रथम नरक की आयु, हाँ 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 पहले हमें भी पता नहीं। हाँ तो मिनिमम पॉसिबल कर दी, मैक्सिमम पॉसिबल नरक की आयु थी और उनके योग्य। हाँ 259 में विशेषास में बताया होगा, वहाँ लिखा है, यहाँ बोल्ड किया है मैंने। नरक में उत्पन्न हुए समय दृष्टि जीव की जघन्य आयु 84,000 वर्ष से कम नहीं होती, और वही नीचे से चौथी लाइन लिखा है 259 का वो पैराग्राफ का नीचे से चौथी लाइन। नरक में 21 विभक्ति स्थान का उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्या तो भाग कम एक सागर प्रमाण है। ये कितनी बातें नई सीखने को मिली हमें, ये जो पहले पता नहीं था। विषय काहे से निकला, हाँ शायद समय दृष्टि नरकों में इतने होते देखा हमने, तो उतने काल तक वहां उत्पन्न होते रहेंगे तो उनकी संख्या असंख्यात बन जाती है, वहां का काल ज्यादा है ना, इसलिए उतने काल में जीव मरकर वहां उत्पन्न होते रहेंगे उत्पन्न होते रहेंगे उत्पन्न होते रहेंगे वो तो असंख्यात हो जाते हैं। वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, ये तो होते हैं सब असंख्यात। अब मिथ्या दृष्टि कहा, वो होते हैं अनंत, परंतु उनमें वो फिर घटित करना है इंद्रियों को। संगी, असंगी होते हैं अनंत, उनमें भी वो तो जगन्य वाले, वो तो असंख्यात विभाग होते हैं। एक इंद्रियों को लेना, असंगी कहते तो एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक सभी आते हैं उसमें। अनाहारक जीवों के जानना चाहिए, अनाहारक में भी वो सारे एक इंद्रिय हो गए, सभी हो गए। अब ये तो हमने जो देखा, असंख्यात वा भाग और असंख्यात बहुभाग, क्या कहते हैं? अनाहारक विग्रह गति में ही हो गए। नहीं नहीं, वो यहाँ विभक्ति वालों की बात चल रही ना, वो 13वां 14वां वाले यहाँ कंसीडर ही नहीं। आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने वो असंख्यात वा भाग और असंख्यात बहुभाग देखा, पहले अनंत वा भाग देखा था। अब मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में मुनि की जघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव, जघन्य और अजघन्य स्थिति वाले पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यों के कितने भाग हैं? ते संख्यात विभाग है, क्योंकि वही शपक का अंतिम समय लेना है, 10वें का। तथा अजघन्य स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने भाग हैं? संख्यात बहुभाग है। इसी प्रकार यही कथन, कौन सा? संख्यात वा भाग और संख्यात बहुभाग। सर्वार सिद्धि के देव, आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, अपगत वेद वाले, अकषायी, मनपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के कहना चाहिए। ये तो आसान है ना? इस प्रकार भागा भागानुगम समाप्त हुआ। पहले उत्कृष्ट में देखा, अब जघन्य में देखा। अब परिमाणानुगम दो प्रकार का है। पहले अनंत वे भाग देखा था या असंख्यात वे भाग देखा, जैसे अभी हमने एक केंद्रीय में असंख्यात वा भाग देखा, फिर भी उसका प्रमाण कितना है? असंख्यात वा भाग कहो तो कहो, तो उसका प्रमाण जो कुछ अनंत होगा वो यहां बताएंगे। पहले तो वो कितवे भाग प्रमाण है कहा, जैसे हमने वो सवा भाग किया, 500 का भी सवा भाग हो सकता है और लाख का भी सवा भाग हो सकता है, परंतु उसका एक्चुअल प्रमाण कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है वो यहां बताएंगे, यानी उनकी संख्या कितनी है। तो परिमाणानुगम दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उनमें से उत्कृष्ट परिमाणानुगम का प्रकरण है, यानी उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति किनके होती है। तो हमने देखे थे अनंत वा भाग और अनंत बहुभाग, ऐसा हमने देखा था, तो उसका प्रमाण यहाँ बताएंगे। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं? असंख्यात है। उत्कृष्ट की सोचना है अभी, जघन्य की नहीं। उत्कृष्ट कौन होते हैं? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव, तो वो कितने हो गए? असंख्यात है। अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं? अनंत है। ये असंख्यात है, उसको भागा भाग में हमने कितना कहा था? अनंत वे भाग कहा था। अनंत वा भाग भी असंख्यात है वो। इसी प्रकार तिर्यंच, यानी तिर्यंचों में भी ऐसा ही कथन होगा। तिर्यंचों में भी संगी है, पंचेंद्रिय है, पर्याप्त है, मिथ्या दृष्टि है, उनके उत्कृष्ट बंधन, उत्कृष्ट स्थिति, और बाकी जो है अनंत है, क्योंकि तिर्यंच कहते वो तो सब एकेंद्रिय उसमें आ जाते हैं, तो उनमें अनंत हो गए और वे असंख्यात हो गए। सभी एकेंद्रिय वनस्पति कायिक, यानी ऐसा ही उनमें कथन, ये प्रमाण होगा। मुनि की उत्कृष्ट स्थिति वाले एक केंद्रीय कितने हो गए? असंख्यात हो गए। एक केंद्रीय में उत्कृष्ट स्थिति किसके होती है? हाँ, देव में से मरकर आए हैं। हाँ, पहला समय तो सभी एक केंद्रीय वनस्पति कायिक निगोद काय योगी औदारिक काय योगी बाकी अनंत घटित होते हैं ना, तो ये अनंत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसकी संख्या बताएंगे। औदारिक मिश्र काय योगी कार्मण काय योगी नपुसक वेदी क्रोधादि चारों कषाय वाले मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी असंयत अचक्षुदर्शनी कृष्ण आदि तीन लेशा वाले भव्य अभव्य मिथ्यादृष्टि असंगी आहारक और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए, ऐसा ही कथन होगा। ओग का जैसा कथन है, कितना? उत्कृष्ट वाले असंख्यात और अनुत्कृष्ट वाले अनंत, ऐसा ही कथन इन मार्गणाओं में होगा। अब आदेश की अपेक्षा नारकियों में मुनि की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं? तो असंख्यात है, दोनों ही असंख्यात है। फिर भी हमने क्या देखा था? उत्कृष्ट वाले असंख्यातवा भाग है और वे असंख्यात बहुभाग है, फिर भी दोनों की संख्या असंख्यात असंख्यात। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों के नारकी सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देव सभी विकलेंद्रिय, देखो सहस्रार तक को ही लिया है, सभी विकलेंद्रिय सभी पंचेंद्रिय पृथ्वी का एक आदि चार काय वाले, क्योंकि वो असंख्यात जहां घटित होते, क्योंकि वनस्पति काय वालों में तो अनंत होते हैं इसलिए उसको नहीं लिया। सभी त्रस पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी वैकृत काय योगी वैकृत मिश्र काय योगी स्त्री वेदी पुरुष वेदी, ये तो उत्कृष्ट की बात चल रही है अपनी। विभंग ज्ञानी अभिनिबोधि ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी संयता संयत यानी मार्गणा देखते तब उन मार्गणाओं में उत्कृष्ट जब होगा उसकी बात करते। चक्षु दर्शन वाले अवधि दर्शन वाले पीत आदि तीन लेशा वाले सम्यक दृष्टि वेदक सम्यक दृष्टि उपशम सम्यक दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि वे भी असंख्यात है ये भी असंख्यात है, इतना ही प्रमाण है। फिर भी उसका भाग कितना है? तो वो उत्कृष्ट है वो असंख्यात वे भाग है और बाकी अनुत्कृष्ट है वे असंख्यात बहुभाग है। यहाँ तो प्रमाण है। हाँ, देखो देखो आपका ऐसा प्रश्न है, जब हमने उत्कृष्ट की बात की थी और भागा भाग की बात की थी तो उसमें हमने अपराजित तक के भवनवासियों से लेकर अपराजित तक के देव लिए थे, ये असंख्यात बहुभाग ये असंख्यातवा भाग और असंख्यात बहुभाग, और यहाँ आप प्रमाण में उनको नहीं लिया है, बराबर है ना? आपका प्रश्न ऐसा ही है। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति में उनको क्यों नहीं लिया? नहीं, उनके योग्य हाँ सामान्य देवों में उनको नहीं होगी, क्योंकि वहां तो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है ना, हमने ऊपर देखा था अनंत से लेकर ऊपर सभी। हाँ, उनकी अपनी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट होगी, ऊपर क्या लिया था? देश की अपेक्षा हाँ इसी प्रकार आनंद से लेकर संख्यात और असंख्यात लेना।
नहीं समझे?
देखो भागा भाग में क्या कहा था, असंख्यातवा भाग और असंख्यात बहुभाग। तो असंख्यातवा भाग संख्यात है, जैसे हमने पहले असंख्यातवा भाग अनंत घटित किया था, ऐसे असंख्यातवा भाग संख्यात है और वो असंख्यात है। यानी थोड़े ही जीव ऐसे लीन है, आनंद से लेकर उत्कृष्ट स्थिति के साथ जाने वाले जीव कम हो गए, संख्यात होंगे। यानी अनुत्कृष्ट से जाने वाले जीव मैक्सिमम होंगे ना, संख्यात। देखो उसके लिए स्वामित्व निकालो आनंद से लेकर, दो दो तीन मिनट है ना, उत्कृष्ट का स्वामित्व। सत्रह पेज के आसपास कहीं होगा, आनंद से लेकर उत्कृष्ट स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी 17 पेज नीचे से तीसरी लाइन। तो जो द्रव्यलिंगी जीव आनंद आदि स्वर्गों में उत्पन्न हुआ, उसके उत्पन्न होने के पहले समय में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति होती है। तो पहले समय में एक ही समय एक तो जी, और वो जाने वाले तो मनुष्य में जाएंगे। तो इसलिए ये जगन्य की बात, हाँ उत्कृष्ट स्थिति की बात है। हाँ, हाँ उनके योग्य, हाँ अंत कोड़ा कोड़ी है फिर भी उनके योग्य। तो वो जीव कितने हो गए, तो संख्यात हो गए। ये हमारी लिस्ट पढ़ी है पूरी, हमने नहीं कहा संगी जीवों के कहना चाहिए। मनुष्यों में मोनी की उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं, संख्यात है। क्योंकि मनुष्यों में उत्कृष्ट किसके होगी, पर्याप्तों की होगी। पर्याप्तों में भी सभी की नहीं होगी, थोड़े जीवों की होगी। अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले कितने हैं, जब मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य कहने से लब्धि अपर्याप्तक भी उसमें आए, तो टोटल संख्या तो असंख्यात हो जाएगी। परंतु लब्धि अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट स्थिति नहीं होगी, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति बंधक के काल में ही पाई जाती है। मनुष्य मरकर वहां चला जाएगा तो भी अंतर्मुख के बाद जाएगा, तो उसके अनुत्कृष्ट कहलाएगी, मनुष्यों के लिए अनुत्कृष्ट। अकेले लब्धि अपर्याप्तक की बात करेंगे तो उसके लिए उत्कृष्ट होगी, पर यहाँ सामान्य मनुष्यों की बात है। तो उसमें उत्कृष्ट वाले संख्यात है और अनुत्कृष्ट वाले असंख्यात हैं। जब भागा भाग में देखा था, हमने असंख्यात वे भाग और असंख्यात बहुभाग कहा था। तो असंख्यातवा भाग संख्या उसकी संख्यात है। ऐसा ही इसी प्रकार आनंद से लेकर अपराजित तक के देव और क्षायिक समय दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। क्षायिक समय दृष्टि है तो कितने, असंख्यात है। परंतु क्षायिक सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले संख्यात हो गए। क्षायिक में तो वो तो क्षायिक करने के पहले समय में ज्यादा होगा, फिर बाद में तो घटते ही चला जाएगा। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति विभक्ति वाले जीव कितने हैं, संख्यात है, दोनों ही संख्यात हो गए। उसका भाग कितना होता है तो हमने पहले देखा था, संख्यात बहुभाग और संख्यातवा भाग। फिर भी दोनों का प्रमाण कितना है, तो संख्यात है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के देव आहारक कायोगी, आहारक मिश्र कायोगी, अपगत वेद वाले, यानी वो संख्यात संख्यात ही होंगे। ओकशाई मनपरे ज्ञानी, संयत सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के कहना चाहिए। इसका विशेषार्थ कल देखेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत होलो। दोषी सा